ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं बीके कोमल हूँ। आज आप लोगों के और मंच के बीच में जो भूमिका निभाऊंगा मैं ही हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पैरवी करूं मंच को छोड़ के, क्योंकि ये टॉक शो है तो टॉक शो में आदान प्रदान होगा। और आप लोग दो दिन से यहाँ हैं और पत्रकारों की तो नज़र बड़ी तिरछी होती है, तो मुझे लगता है कि इस हवा में तिरछी चीज़ें आपने ढूंढी ही होगी कि आपके लिए क्या लाभदायी है और बाकी लोगों के लिए क्या जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हवा सुबह से रात तक आपको छूती होगी, सुबह भी छूती होगी, रात को भी छूती होगी, और खाना पीना जो खा रहे हैं वो भी आपको अंदर असर कर ही रहा होगा। तो बहुत कुछ बताने को है नहीं, और जो टॉक शो है ये हमारे मंच पे तमाम विद्वान होंगे, लिस्ट लंबी है लेकिन मैं सबको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि कोई अपनी दायरे से बाहर न जाए, क्योंकि एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है अगर कोई दायरे से बाहर जाता है तो एक्सीडेंट ये होगा कि समय की सीमा टूट जाएगी और फिर वो अपने पत्रकारों के लिए ठीक नहीं है। तो उस पर हम लोग पूरा आज ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान का भंडार तो है लेकिन लिमिट में है, उसी हिसाब से बांटना चाहिए जितना आदमी ग्रहण कर सके। तो आज का सब्जेक्ट जो है व्यवसायिक अनुशासन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता। सब्जेक्ट थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हमारे लिए ही और आपके लिए ही है, तो हम लोग थोड़ा सा टेढ़े में भी सीधा उसका उत्तर ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है और खास करके पत्रकार की कौम के लिए। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात कही है। अगर कोई बात बुरा उरा लग जाए तो आप बता दीजिएगा कि मेरे को बुरा लगा है, तो उसके लिए भी क्षमा याचना है। तो हम लोगों का ये सत्र 11 बजे तक चलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 बजे हम अपने सत्र को पूरा कर दें, क्योंकि आगे समापन है। मैं मंच पे बिना अपनी बातों को खींचे मैं आमंत्रित करता हूं उन तमाम मेहमानों को जो हमारे मंच पे आज मौजूद रहेंगे। दीप्ति जोशी जी हैं अगर हमारे बीच में बैठी हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ हैं आप, लोक सामना न्यूज मुंबई से आई हैं, युवा लग रही हैं और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर श्री गोपाल नरसन जी हैं, चीफ एडिटर हैं डिवाइन मिरर चैनल, रुड़की से हैं, ब्रह्मा कुमारी से बड़ा पुराना जुड़ाव है इनका, आइए। डॉक्टर अमित वर्मा हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से। अगर बीच में आप मेरी आवाज़ कहीं से सुन पा रहे हैं तो आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए मंच पे। ब्रदर पवन सहयोगी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन दिल्ली, आप वहां से आए हैं। सिस्टर शशि शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं देहरादून की, अगर वो भी बीच में मंच पे हैं तो आप कृपया मंच पे आ जाएं। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह हमारे पुराने मित्र हैं और बड़ी सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, मैं कहता हूं कि आप भी स्थान ग्रहण करें अगर बीच में हैं तो। एडिटर हैं लाइव स्टोरी टाइम्स आगरा के। प्रोफेसर शशिकांत भगत हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेटिव यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आए हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आ जाएं। डॉक्टर बी के गंगाधर जी हैं, एडिटर ओम शांति मीडिया मैगजीन के और हमारे संस्थान के बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि अगर आप इधर हैं कहीं तो आप आ जाएं। और विनोद सोनी, डॉक्टर विनोद सोनी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मीडिया स्टडीज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, आप अगर बीच में बैठे हों तो आप मंच पे आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर अतुल गौतम हैं, गेस्ट फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। और डॉक्टर दीनदयाल मित्तल हैं जो आज चेयर करेंगे इस मंच को, एडिटर इन चीफ हैं श्रीमत एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून से। मुझे लगता है कि सारी कुर्सियां भर चुकी हैं, सामने की तो खाली रहेंगी क्योंकि इतनी रहने की क्षमता भी नहीं है जो सारी कुर्सियां भर सकें, पर जितने आप लोग हैं वो सबके लिए बराबर है। जी आए, या तो 3 मिनट योग कर लेते हैं जब तक बहने आए, समय बड़ा कीमती है।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो, सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
बहने तैयार हैं, सबका स्वागत कीजिए। गुलदस्ते से दीप्ति जोशी जी हैं, इनका स्वागत हो रहा है। पुष्प बैज से ताली बजा दीजिए, अगर नाश्ता वास्ता करके आए हैं सुस्ती आएगी थोड़ी, ताली से दूर भी हो जाएगी। हालांकि ये सत्र ऐसा है कि उसमें नींद आएगी नहीं, क्योंकि आंख खोल के बैठने वाला सत्र है ये। भाई साहब, ये जो आप लोग एकदम बॉर्डर पे बैठे हैं बाड़मेर के, वहाँ तापमान ज्यादा है, इधर आ जाइए। आप ही लोगों को कह रहे हैं, दिख नहीं रहे उधर से। जी जी जी, सरहदी इलाकों से इधर आ जाए बीच में, क्या है? जी जी, इधर आ जाइए। अच्छा, वो टीवी में देख नहीं, यहाँ तो सामने सामने दिखेंगे ना ये। अच्छा, ये जो स्वागत हो रहा है ये खुश करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के तो गले में पट्टे पड़ नहीं रहे, तो अब चूंकि मंच पे बैठ रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। बट मेरे तरफ से है कि हमारी तो इच्छा है कि हम सबका स्वागत करें। और मैं अपने तरफ से आप सभी का, समझ लीजिए कि हर एक गले में मैंने पट्टा डाल दिया है, आप इसको, मेरी भावनाओं को स्वीकार करिए, भावना ही प्रधान होती है। हमारे आदरणीय शांतनु भाई पगड़ी पहना रहे हैं, क्योंकि इनको तो किसी ने पहनाया नहीं, लेकिन सबको पहना रहे हैं दो तीन दिन से लगातार। बड़े आपका ख्याल रख रहे हैं, देखिए आपके रहने खाने पीने हर चीज का फिक्र करते हैं। तो इसलिए हमारे तरफ से भाई साहब को पकड़ा रहे, ये सबके तरफ से है, आप समझिए तो सही है। अरे नहीं, अरे ठीक है, सबके तरफ से है। वाह भाई, सही है, आप सबके तरफ से शांतनु भाई को पकड़। अब देखिए, मेरे को ये बेल दी गई थी, मैंने मना कर दिया कि मैं बेल की परंपरा खत्म कर दूंगा यहाँ, क्योंकि बेल तो जो नहीं मानता उसके लिए बजाया जाता है, लेकिन यहाँ सब मानने वाले लोग हैं। अच्छा, आ गए भाई साहब हमारे, सोनी जी, शायद विनोद सोनी जी हैं, उनको भी पगड़ी पहना कर स्वागत कर दीजिए। इसमें दो चीज़ें होंगी, मैं बता देता हूँ आप सबको। इसमें जो हमारे मंच पे बैठे हैं सब ज्ञान के सागर लोग हैं, और ज्ञान के सागर में ज्ञान की कमी तो है नहीं, बट मैं आप लोगों से आग्रह जरूर करूँगा कि आप अपने ज्ञान के सागर में से उतनी ही बूंदें दीजिएगा जितना सामने लोग जो है सबको कुछ कुछ बूंदें मिल जाए, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि दो दो मिनट में इस सब्जेक्ट पर अपनी बात रखें, और उसी बीच में आप सबसे भी वार्तालाप होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट केंद्रित हो, नहीं तो क्या होता है कि हम पता नहीं जाते हैं, आजकल अंधेरा है ना, कहीं से कहीं गाड़ी निकल जाती है, वो हमको नियंत्रण पर रखना है। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट केंद्रित हो और क्वेश्चन आंसर हो। कई बार कई लोग इतना भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा होता है ना, वो अनुभव भी सुनाने लगते हैं, अच्छी बात है, सुनाना भी चाहिए, लेकिन ये सत्र जो है ना, अगर हम इस पर केंद्रित रहेंगे तो दो ही घंटे में पूरा होगा, ठीक है? तो मैं बिना विलंब किए, सबका हो गया होगा मैं समझता हूँ। अच्छा,
बाद में उतार।
भाई साहब देखो अब कितना प्रेम है कि बोलने की फोटोग्राफी के सही ही लेकिन टोपी पहना दिया हमें भी। चलो अरे भाई साहब बताओ ये सा नेकी कर और दरिया में डाल वाला मामला नहीं है, ये साफा ले जाना है आपको। शांतनु भाई ने स्पेशली कहा है कि ये साफा आप सबको ले जाना है, ठीक है, इसके आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी बात तो मैं खत्म करता हूँ, दूसरे लोगों की बातें शुरू करता हूँ। और मैं माफी चाहूंगा, मैं बायोडाटा सबका बहुत लंबा लंबा है, मैं पढ़ के लोगों का सामने वालों का मैं के साथ में अन्याय नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है इनका टाइम हमारे लिए कीमती है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजों में आप, क्योंकि आप तो अपने आप में अपना परिचय हैं। और मैं सबसे पहले दीप्ति जोशी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज का जो सब्जेक्ट है व्यावसायिक अनुशासन, अब व्यवसाय में किस तरीके से अनुशासन होना चाहिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उसमें एक चीज डाला हुआ है। तो आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर मान लीजिए कि आप मिठाई खा रहे हैं और उसके बाद एक उसकी शुगर वाली गोली खा रहे हैं तो जाहिर से उस कंट्रोल हो जाएगा। मिठाई खाना है लेकिन शुगर की गोली के साथ खाना, मतलब वैसा ही सब्जेक्ट मेरे को लग रहा है। तो व्यवसायिक अनुशासन, व्यवसाय में किस तरह से अनुशासन होना चाहिए और उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत क्यों है, देखिए मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं एक चीज। आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म दोनों चीजें डिफरेंस है, इस चीज को जरा समझिएगा आप लोग। आप ज्ञान सरोवर की हवा में जो तैर रहे हैं यहां आध्यात्मिक ज्ञान है, और धर्म की परिभाषा को अगर आप परिभाषित करें तो यह हमारी धारणा है कि हम इसके अनुकूल चल रहे हैं। आज हमारे समाज में ये चीजें बिल्कुल लाइन से हट गई हैं, इसलिए सांप्रदायिक उन्माद, तेरा मेरा, हिंदू मुस्लिम, ये सारे फसाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म की परिभाषा को जब हम समझेंगे तब जाके हमारा एक अच्छा समाज बनेगा, जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, समझ रहे हैं, ये चीज आज इसमें मेंशन है। तो मैं दीप्ति जोशी जी आपसे आग्रह करता हूं, आपका बायोडाटा तो बड़ा लंबा है, क्या उसमें से बताऊं मैं आपके लिए। मैं दीप्ति जोशी जी, आप ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ हैं लोक सामना न्यूज के, और जाहिर सी बात है कि जब ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ हैं तो आप लंबे समय से काम भी कर रही होंगी और आपकी काफ़ी कुशलता भी होगी, तो उस तमाम चीज़ों को रखते हुए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इतना आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है अपनी भावनाएं इस सब्जेक्ट पे रखें कि व्यावसायिक अनुशासन में आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत क्या है, और दो दो मिनट में हम सब लोग बोलेंगे, फिर बाद में सबको बोलने का अवसर मिलेगा। जी दीप्ति जी।
ओम शांति। कितना समय दे रहे हैं मुझे? 2 मिनट। ओके तो हम बात करते हैं व्यावसायिक अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान। हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए प्राचीन भारत से दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास इतनी अच्छी परंपरा है। हम एक तरफ देखते हैं प्रोफेशनल डिसिप्लिन, दूसरी तरफ है प्रोफेशनल डिसिप्लिन विथ स्पिरिचुअल विजडम, ये दो उदाहरण लेते हैं। एक है प्रोफेशनल डिसिप्लिन विदाउट स्पिरिचुअल विजडम, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है रावण। प्रोफेशनल डिसिप्लिन विथ स्पिरिचुअल विजडम, इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन हो सकता है, बता सकते हैं? प्रोफेशनल डिसिप्लिन विदाउट स्पिरिचुअल विजडम, इसका उदाहरण है रावण, तो प्रोफेशनल डिसिप्लिन विथ स्पिरिचुअल विजडम, इसका उदाहरण कौन होगा? श्री राम, है ना? तो हम ये दो उदाहरण देखते हैं कि दोनों की डिसिप्लिन की हम बात करें कि दोनों भी सामान्य नहीं है, ये असामान्य नेता है। रावण के पास प्रचंड बुद्धिमत्ता थी, वेदों को स्वर देने वाले रावण है। श्री राम ने वेदों को स्वर दिया है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। शिव तांडव जैसा स्तोत्र रचने वाले रावण थे, वो प्रोनाउंसिएशन सीखने में भी हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उन्होंने वो रचना की थी। श्री राम ने किसी स्तोत्र की रचना की हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है। संपत्ति की बात करें तो लंका जो है वो सोने की थी, अयोध्या सोने की नहीं थी। अयोध्या जो है आज भी आप देखेंगे तो 20 किलोमीटर के सर्कस में खत्म हो जाती, उतना छोटा राज्य है। श्रीलंका जो है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। तो सत्ता में रावण ज्यादा है, वित्त यानी पैसे में रावण बहुत ज्यादा है, शक्ति में भी ज्यादा है, बुद्धि में भी ज्यादा है, लेकिन जो मंदिर बनता है ना वो श्री राम का बनता है और पुतला जलता है तो रावण का जलता है। तो यहाँ पे हमें स्पिरिचुअल विजडम की जरूरत पड़ती है जो हमारा चरित्र निर्माण करता है। ऐसे कहते हैं कि किसी भी प्राणी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे चिड़िया को कहा नहीं जाता है कि तू चिड़िया बन, वो अपने आप ही चहकती है। हाथी को कहना नहीं पड़ता है कि तू हाथी बन। ये संसार में एक ही प्राणी है इंसान, जिसको कहना पड़ता है कि तू इंसान बन। तो हमें बनाने के बाद शायद ईश्वर भी पछताया होगा, हमें बनाने के बाद शायद ईश्वर भी पछताया होगा कि किसको बना दिया जिसको अपना अपने आप बनना न आया होगा। तो इंसान के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगा है कि हमें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ भी नहीं आती है। किसी जानवर का बच्चा है ना, उसको चलना नहीं सिखाना पड़ता है, वो चार पैर पे चल जाता है। इंसान का बच्चा जब जानवर के जैसे रेंगता है, फिर दो पैर पे खड़ा होता है, तो सेलिब्रेशन होता है कि हमारा बच्चा चलने लगा है। अब देखें, कोई भी जानवर का बच्चा है वो स्विमिंग कोच सीखने नहीं जाता है, इंसान के बच्चे को स्विमिंग भी सिखाना पड़ता है। तो यही समस्या है हमारे साथ कि इंसान को मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, दोनों बातें सिखानी पड़ती है। एक छोटा उदाहरण है कि छोटा सा बालक था, उसे एक मानसिक बीमारी थी, वो खुद को मूंग का दाना समझता था और मुर्गी देखते ही भागने लगता था। उसको लगता था कि मुर्गी मुझे खा जाएगी। तो बहुत इलाज कराए, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, स्पिरिचुअल हीलर्स को बुलाया और उसको सिखाया कि बेटा तू इंसान का बच्चा है, तू मूंग का दाना नहीं है, मुर्गी तुझे नहीं खाएगी। बहुत सिखाया। फिर वो बच्चे से बुलवाया कि बोलो अब सीख गए? तो बच्चे ने बोला कि हाँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ, मैं मूंग का दाना नहीं हूँ और मुर्गी मुझे नहीं खा सकती है, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप खुश हुए, टीचर्स खुश हुए, बोला जा बेटा। उसको भेजा और वापस उसके सामने मुर्गी को ले आए। जैसे ही उसने मुर्गी को देखा भागने लगा। सबको लगा इतना सिखाया, इतना सीख गया बच्चा, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? तो उसको पूछा कि इतना सिखाया, आप समझ गए हो, अब इसको देख के भाग क्यों रहा है? तो बच्चे ने कहा कि मैं इंसान का बच्चा हूँ, मैं मूंग का दाना नहीं हूँ, मुर्गी मुझे नहीं खा सकती है, ये मुझे अच्छे से पता है, ये आपको भी पता है, मेरे माता पिता को भी पता है, लेकिन ये मुर्गी को तो नहीं पता है ना, वो तो मुझे खाएगी। तो हम जब ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि कैसी बीमारी है, पर गौर करेंगे तो यही बीमारी हम सबको है, यही बीमारी हम सबको है। हम परमपिता परमात्मा की संतान है, पर हमें नहीं लगता है कि हम उतने महान हैं। हम लोगों की दृष्टि से खुद की वैल्यूएशन करते हैं और मुर्गी के कद से भी छोटे कद की समस्याओं से हम भागते हैं, क्योंकि हमें अपने मूल्य की पहचान नहीं है। जब हम वो समझेंगे तो हम वो भागना जो है, डर के भागना जो है, वो छोड़ देंगे और तब सही अर्थ में मूल्य जो हम कहते हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम है, वो उसका असर जो है वो देखने मिलेगा। तब तक हम समाज में भ्रष्टाचार, चोरी, यही सब देखते रहेंगे। दिस आई कंक्लूड। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी को, और इन्होंने बड़े सलीके से उस बात को रखा है। और इसमें मैं चाहता हूं कि इनकी बातों पे सहमति है या असहमति है। अगले हमारे वक्ता श्री गोपाल नरसिंह जी हैं, चीफ एडिटर हैं दीवान मिरर के, और ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी बदली है, तो उसी पे फोकस रखिएगा, व्यवसाय में आध्यात्मिकता समय सीमा का ध्यान रखते। धन्यवाद।
ओम शांति। कोमल भाई के अनुशासन से हम सब बंधे हैं, बिल्कुल ख्याल रखूंगा। आबू की धरा निराली, ज्ञान सरोवर में छाई हरियाली, रूहानियत यहाँ कण कण में बसी है, शिव बाबा की अपनी नगरी है, ब्रह्मा कुमारी जी का है मुख्यालय, चरित्र निर्माण का यह देवालय, ओम शांति मंत्र है यहाँ का, जो आता हो जाता यहाँ का, आत्म स्वरूप का ज्ञान मिलता, राजयोग का अभ्यास जो करता, प्रभु मिलन की धारा यही है, स्वर्ग से अनुभूति यही है। व्यावसायिक अनुशासन में आध्यात्मिक ज्ञान आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम जो भी व्यवसाय करते हैं वह तभी अनुशासित रह सकता है जब हम व्यावसायिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हों। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें संयम, मधुरता, ईमानदारी व आत्मिक अनुशासन सिखाता है। बीके सिवानी भी कहती हैं, पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है और यही वास्तव में तप है। तीन प्रकार के अनुशासन रिचर्ड जे फोस्टर ने बताए हैं। आंतरिक अनुशासन, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, उपवास और सेवा को शामिल किया गया है। इसी तरह से बाह्य अनुशासन, इसमें सादगी, एकांत, समर्पण और इसमें भी सेवा को शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट अनुशासन, जैसे अभी ये विषय है व्यावसायिक अनुशासन, इसमें स्वीकारोक्ति, हम सहजता से स्वीकार कर लें, आराधना, मार्गदर्शन और उत्सव। अरस्तु कहते हैं, जो कर्म करने की शक्ति हमारे अंदर है, वही कर्म न करने की शक्ति भी हमारे ही अंदर है। सोचना हमें है कि हम कर्म करें या फिर न करें। एम स्टॉक पेक जो साफ कहते हैं, अनुशासन ही बुद्धिमत्ता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्म अनुशासन आता है, जो बाद में निरंतर अभ्यास से व्यावसायिक अनुशासन में रच बस जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन पर शासन करें, वरना मन आप पर शासन करने लगेगा। यार खुदा है मेरा जिसने खुद, यार खुदा है मेरा जिसने खुद दर पर अपने मुझे बुलाया है, छुड़ाकर पल्ला दुनिया का मुझे रब ने अपना दामन थमाया है, अपना दामन थमाया है। आज हम इस परमात्मा की धरती पर आए हैं यही सीखने के लिए। पिछले चार दिन से जो सीख रहे हैं यही वो है कि अध्यात्म के रास्ते ही हम व्यावसायिक अनुशासन को प्राप्त कर सकते हैं, अपने वैश्विक जो मूल्यनिष्ठ समाज है उसकी स्थापना कर सकते हैं और मीडिया के माध्यम से हम सकारात्मक पत्रकारिता का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और ये मेरा अनुशासन नहीं है साहब, ये तो वो सब्जेक्ट का अनुशासन है और पत्रकारों का ही अनुशासन है। और हमें खुशी हो रही है कि इस अनुशासन का सब लोग आज पालना कर रहे हैं। मुझे लगता है जितने सत्र हुए हुए हैं सबके अनुशासन की मर्यादाएं टूटी होंगी, जहां तक मेरा ख्याल है। अब तक जो हमने कर, यही एक सत्र होता है जिसमें अनुशासन पूर्णतया से फॉलो होता है। और ये सत्र ऐसा है कि वो तोड़ने वाला होता है लेकिन फॉलो होता है। अब हमारे सामने डॉक्टर अमित वर्मा जी हैं। अमित वर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज पे जरा फोकस करिए कि व्यवसाय में अनुशासन का क्या मतलब है और अनुशासन क्या है उसमें, कि भाई 2 रुपया कमाना है तो क्या उसमें से 4 आना ही रखना है क्या अपने पास। व्यवसाय में किस चीज का अनुशासन है वो बता दीजिए, और उसमें उसमें ज्ञान की क्या जरूरत है संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि हम लोग वापस डिस्कशन करेंगे, सबका वापस नंबर आएगा, तो मतलब थोड़े से शब्दों में आप बताइए कि व्यवसाय में अनुशासन का मतलब क्या है। आपके बारे में तो मैंने पहले भी बता ही दिया है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से। बायोडाटा सबका लंबा है, मैं विनम्रता से माफी चाहूंगा क्योंकि सब समय बायोडाटा पढ़ने में चला जाएगा और 1 घंटा ही हमारे पास है, इसलिए मैं आप लोगों से उसके लिए छुट्टी चाहिए। जी अमित जी,
जी कोमल भाई जी, आपने जो कहा है उसी विषय पर मैं टिकूंगा। और सबको ओम शांति, मेरा नमस्कार। मेरे कल एक प्रोग्राम में मेरे किसी कलीग ने मुझे कहा था कि मई के महीने में जो अंग्रेजी में हम अभिवादन करते हैं वार्म वेलकम, ऑलरेडी नेचर ने बहुत वार्म किया हुआ है। ये तो यहाँ पे माउंट में 28 डिग्री है, वरना आप नीचे जाएंगे तो 40, 42, 45, 50 डिग्री है, तो वार्म वेलकम तो अब कहने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी। अब जो आज का जो हमारा विषय है आध्यात्मिक ज्ञान और कार्यस्थल पर, ये विषय नहीं है आज के तौर पे, इसकी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि आप देखेंगे हर एक व्यक्ति उसके पास में दीर्घकालीन सफलताएं नहीं है, आंतरिक सफलताएं नहीं है। हो सकता है पैसा हो सकता है गाड़ी हो सकता है उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन आंतरिक उसके पास में सफलता नहीं है। और पहले मैं अपने प्रश्न का ही जवाब दे दूं कि व्यवसाय के अंदर जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चाहे किसी भी, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी एक विचारधारा या किसी भी एक को समझें, क्योंकि मंच पे बैठे हुए और मंच के उधर बहुत सारे लोग, यहाँ पे मैं किसी धर्म विचारधारा संप्रदाय उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस आध्यात्मिकता का मतलब है कि वो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानने का आपको एक अवसर प्रदान करे, आपको पता चले कि आप अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवसायिक जीवन पर संयम बरतें, धैर्य बरतें, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। और उस सवाल का एक जवाब एक छोटी सी कहानी से देना चाहूंगा। एक महान व्यक्ति था जो बहुत कुशल कारीगर था फर्नीचर बनाने में, और उसके फर्नीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो एक स्वामी जी जब उसके गांव में आए और उसने कहा कि आप एक यहाँ पे आप एक दिन हमारे साथ में रहिए, तो स्वामी जी ने देखा कि उनके जो कारीगरी है वो बड़ी कुशल है, बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड उसके फर्नीचर्स की है, लेकिन कमी क्या रही कि जो व्यक्ति था, सेठ जो था, उसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण वो अपना धैर्य खो बैठता था। वो तो वो कहीं ना कहीं जब अपना ग्राहक आता या फिर जो और उसके जो कारीगर थे उन पे वो गुस्सा हो जाता था, तो उसका प्रभाव उनके काम पर पड़ता और उस काम का प्रभाव उनकी सेल्स पे पड़ता, क्योंकि कोई लेता नहीं। तो जब जाने लगे स्वामी जी तो उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक ऐसे जगह की जरूरत है जहां पे आप आपकी जो कुशलता है उस कुशलता को इस्तेमाल करते हुए अपना एक निर्णय सही लें और अपने साथ में अपनी टीम को भी खुश रखें। क्योंकि आज के टाइम में रामायण युग तो है नहीं, शुरू में दीप्ति जी ने कहा राम और रावण का जो एग्जांपल दिया, आज रामायण युग तो है नहीं, तो जामवंत कौन आएगा? जामवंत तो है नहीं कि आपको बताएगा कि अपनी आंतरिक शक्तियां पहचानिए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो आपको बताएगा कि आपको कब क्या कैसे कहां रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इसका फर्क ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बात ना करेंगे, उसका बातचीत करने से, आपकी कुशलता से, आपके व्यवहार से, आपकी सेल्स से, आपकी आंतरिक और बाह्य दोनों आपकी सफलताएं मिलेगी। हो सकता है कि आप आईफोन का फोन रखते हो लेकिन जब तक अंदर आप खुश नहीं है ना तो वो फोन काम नहीं आने वाला है, क्योंकि फोन तो बाहरी लोगों से बात करा रहा है, अंदर वाला बात कराने वाला डिवाइस होना चाहिए। तो जामवंत बनिए, या तो ऐसे साथ में रखिए या फिर आध्यात्म को अपने अंदर रखिए।
क्या बात,
धन्यवाद,
थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि खबर में तड़का लगा के पैसा कमाना व्यवसाय में अनुशासन है या अनुशासनहीनता, इस पे हमारे अगले सवाल जो होंगे। देखो हम सब पत्रकार हैं तो उसी पे हम बात कर रहे हैं कि किसी खबर में टोन हाई करके और सामने वाले को ओबलाइज कर देना, क्या यह अनुशासन में आता है या अनुशासन से बाहर? इसका हमारे जो अगले वक्ता हैं पवन सहयोगी जी, नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन, क्योंकि आपके पास सारे लोग पूरा माटा का झुंझ जुड़ा हुआ होगा तो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा। आपके सामने जो मैंने बात रखी है वो आप ये बता दीजिए कि अनुशासन के दायरे से बाहर है, अनुशासन में है ये?
ओम शांति। ब्रदर कोमल जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पिछले 3 दिनों से ये ज्ञान की गंगा यहां बह रही है, इस पर मैं कुछ और ऐड करना नहीं चाहूंगा, सीधे भाई सीधे क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। इसके लिए हमें अपने स्वयं मूल्य निर्धारण की जरूरत है, सेल्फ वैल्यूएशन की जरूरत है, और उसके लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण इसमें ऐड करना चाहूंगा। 1993 की एक घटना है, ₹26 मार्च 1993 के द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फोटो छपती है, केविन कार्टर की एक फोटो, बड़ी मशहूर फोटोग्राफर वो थे, उनकी एक फोटो छपती है। ये फोटो सूडान के एक अकाल ग्रस्त इलाके की होती है जिसमें यूएन वहां पर राहत सामग्री अपनी वो भेज रहे थे, वितरित कर रहे थे। उनका प्रयास ये था कि एक ऐसी जगह छूट गई है जहां पर यूएन अपनी सामग्री नहीं भेज पाया, और वो जो फोटो छपा वो बड़ा चर्चित फोटो है, आप सर्च करेंगे, एक मरणासन 5-6 साल की बच्ची और उसके सामने एक गिद्ध बैठा हुआ है, और वो इस इंतजार में बैठा है कि कब इस बच्ची के प्राण निकले और मैं इसको अपने पेट का निवाला बनाऊं। ये फोटो छपता है, उसके लिए उस फोटोग्राफर को अवार्ड दिया जाता है, पुलित्ज़र करके एक बड़ा मशहूर अवार्ड है, वो अवार्ड दिया जाता है, बड़ी बधाइयां उस फोटोग्राफर को मिलती हैं। उसके बाद किसी एक समीक्षक कहें या उनका शुभचिंतक का फोन आता है, वो कहते हैं कि साहब फोटो वाकई बहुत बढ़िया है पर आपसे एक चूक हो गई। उस फ्रेम में, उस जगह, वहां पर दो गिद्ध थे और आपके फ्रेम में सिर्फ एक गिद्ध ही दिखाई दिया। वो फोटोग्राफर उसका मनन करता है और कहता है कि चूक तो हो गई है, वहां पर दो गिद्ध थे। एक वो था जो अपनी भूख के लिए उस बच्ची को निवाला बनाने के लिए इंतजार कर रहा था, और एक दूसरा गिद्ध था जो अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए, जो अपनी व्यावसायिकता के लिए उस पूरे घटना क्रम को एक फोटो कैप्चर करने का इंतजार कर रहा था कि कब ये बच्ची अपना प्राण त्यागे और ये इसको निवाला बनाए। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि उस पत्रकारिता का कोई मूल्य नहीं है जिसमें पॉजिटिवनेस नहीं है, जिसमें मंगल की भावनाएं नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो हम ये कहना चाहूंगा कि हमें इसमें सेल्फ रिलेशन की जरूरत है, स्वयं निर्धारण की जरूरत है कि हम ऐसे कंटेंट लिखें, ऐसे शब्द लिखें, क्योंकि हमारे लिखे हुए शब्द आज ये मान के चलिए कि एक क्लिक हम करते हैं और वो मिसाइलों से ज्यादा तेज गति से पूरे सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो इंटरनेट नेटवर्क से जो जुड़े हैं सारे में वहां तक पहुंच जाते हैं। उसका हम निर्धारण करें, ऐसे कंटेंट को खुद हम विकसित करें, खुद हम प्रोड्यूस करें कि जो सार्थक हो, जो पॉजिटिव हो, जिनका मूल्य हो। और ये जो बात है, ये आध्यात्मिक विजडम, आध्यात्मिक बौद्धिकता कहें, आध्यात्मिक ज्ञान कहें, उसके बिना संभव नहीं है। जितना जितना हम आध्यात्मिकता से जुड़ते रहेंगे, इस विजडम से जुड़ते रहेंगे, हमारे कंटेंट में उतना ही सकारात्मकता, उतनी पॉजिटिविटी, उतना वैल्यूएबल वो कंटेंट बनकर के आएगा। मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, बात यही कि हम अपने कंटेंट को सुधारें। हम अगर सुधरते हैं तो, किसी ने कहा है कि छोटी सी बात में एक दो लाइनें और ऐड करूंगा इसमें, कि यह मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। सोनलाल द्विवेदी जी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिशें करें, अपने कंटेंट में सुधार करें, निश्चित तौर पर हम समाज को अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद
सर, खूबसूरत उदाहरण, बेहतरीन। मैं इसका अगर इसको और अगर व्यवहारिक किया जाए तो, एक मां जब अपने बेटे के लिए भोजन बनाती है तो उस समय उसका दृष्टिकोण क्या होता है, और जब एक होटल मालिक कस्टमर के लिए भोजन बनाता है तो उस समय दृष्टिकोण क्या होता है। मुझे लगता है कि आप इसको मनन कीजिए, रिलेट कीजिए, यहां अनुशासन व्यवसायिक अनुशासन के अंतर्गत आता है या नहीं आता, आप समझ रहे हैं। या अगर आप भोजन भगवान के चढ़ाने के लिए बना रहे हैं तो उस समय क्या भावना होती है, और आपके घर कोई विशिष्ट मेहमान आ जाता है उसके लिए भोजन बनाते उसके लिए क्या भावना होती है, या किसी से कोई काम कराना हो उसके लिए भोजन बनाते तो उस समय क्या भावना होती है, यह अनुशासन के दायरे में आता है या नहीं, और किस तरह का अनुशासन और अनुशासन, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। इसका उत्तर हम आप ही लोगों से लेंगे, हमने क्वेश्चन अटैच कर दिया है। अब हमारे सामने हैं शशि शर्मा सिस्टर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देहरादून से आई हैं। शशि जी, ये बात मैंने इसलिए कही है खाने खजाने वाली, क्योंकि आप जो है हमारे देश की जो अर्धनारेश्वर भगवान ने कहा उसकी आप एक उदाहरण हैं। तो शशि माने चंद्रमा होता है, और चंद्रमा हमेशा लोगों को शीतलता प्रदान करता है, ऐसा सब लोग चंद्रमा के सामने आना चाहते हैं। तो ये जो व्यवसायिक अनुशासन है, अध्यात्म तो उसके बाद की बात आती है, व्यवसायिक अनुशासन में जो दोनों बातें मैंने किया है उसको आप किस नजरिए से देखती हैं, वो जरा आप इस पे अपने संक्षिप्त शब्दों में प्रकाश डालिएगा।
जी, मैं पहले तो प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यहां
मैडम, तोड़ने पर क्षमा तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि तोड़ना तो तोड़ना ही होता है
जी, क्योंकि ज्ञान सरोवर में अमृत वर्षा हो रही है, शीतलता की वर्षा हो रही है, और मैं एक बार आप सब लोगों के साथ इस अमृत कुंड में डुबकी जरूर लगाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी ओम शांति। अद्भुत अद्भुत शीतलता, इस शब्द में अद्भुत शीतलता है। मैं जिस कर्म क्षेत्र से आती हूं, वो कर्म क्षेत्र एक रेगिस्तान है, जहां दिन रात मार काट, ईर्ष्या द्वेष, छल छद्म, यही सारी चीजों से, इन सब चीजों से हमारा सामना होता है। ऐसे में एक संस्थान जो ऐसी शीतलता हमें दे रहा है वो यहां से उतरकर हृदय में सीधे पहुंच रहे हैं। कुछ क्षण से ही उस तपन से बाहर निकलने का एक मौका आपने दिया, वो मौका मैं जी लेना चाहती हूं। हालांकि ब्रह्मा कुमारी से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है एज पत्रकार, अब मैं सभी अपने मंचस्थी जितने भी अनुभव हैं महानुभव हैं उन सब से अभिवादन करते हुए उनका और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूं। 40 वर्ष हो गए मुझे इस क्षेत्र में, इस रेगिस्तान में कहूंगी मैं, 40 वर्ष हो गए पीटीआई दूरदर्शन और बहुत सारे अखबार पत्रिकाएं करते करते। तो इन 40 वर्षों में बहुत सारे लोगों को रेत के नीचे से बाहर निकाला और बहुत सारों को दफन भी किया है। अब उस परिस्थिति में जब ये कि चारों तरफ एक ईर्ष्या द्वेष जलन है, तो जो हमारा व्यवसायिक क्षेत्र है वो इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जब हम एक व्यवसायिक संस्थान शुरू करते हैं तो बाहर तो हम स्लोगन लिख देते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता या फिर सदाचार ही धर्म है, लेकिन वो व्यवसाय करने वाला जैसे ही अंदर एंटर करता है, जो आकर्षण और लाभ के सितारे उसको दिखाई देते हैं वो अपनी छोली में भरने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ये याद नहीं रहता कि वो किस किस की पीठ पे चढ़ के चल रहा है। उसे याद आता है कब, जब वो मुसीबत में पड़ता है, जब वो तरह तरह के अवसाद झेलता है, तब उसे याद आता है आध्यात्म। हालांकि शुरुआत हम आध्यात्म से ही करते हैं अपने संस्थान की। आप जितने भी लोग होंगे देखा होगा आपने कि संस्थान के बाहर लिखा होता है एक धर्म मंत्र, कोई सा भी एक धर्म मंत्र लिखा होता है, लगता है कि अंदर भीतर जब हम घुसेंगे तो शायद उन सब चीजों का पालन हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मैं एक बात और सोचती हूँ हमेशा से, क्या खासतौर पे जब मैंने कल शिवानी जी को सुना तो उसके बाद मेरे दिमाग में बातें घूमने लगी और मुझे लगा कि आध्यात्म क्या है, कहाँ से शुरू हुआ हमारे जीवन में आध्यात्म। आध्यात्म हमारे जीवन में शुरू हुआ जब हमने जन्म लिया। कौन है आध्यात्म? हमारी माँ। हम माँ में ढूंढते हैं आध्यात्म, माँ को लिपटकर बच्चा अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है, वो है आध्यात्म। आध्यात्म क्या है? संरक्षित करने वाला एक संस्थान, एक भावना, उसे आप आध्यात्म कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो आध्यात्म है हमें माँ के पेट से मिलता है और हम माँ को सोचते हैं कि वो हमारा आध्यात्म है। उसके बाद हमारे भाई बहन जो हमारा सच और झूठ सब बांटते हैं और उसमें शेयर करते हैं और सहायता करते हैं, उसमें विकल्प निकालते हैं। भाई बहनों के बाद हमारे जो मित्र होते हैं वो मित्र हमारा आध्यात्म होते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां हैं कि हम किस दिशा में निकल गए। तो इन सब चीजों पर अगर हम गौर करें तो आध्यात्म तो हम लेकर पैदा हुए थे, लेकिन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उन्होंने और जो हमारे लाभ की लालसा है, लाभ की लालसा ने आज देखें आपकी क्या आपकी मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या आपकी थाली में स्वाद है वो पहले जैसा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां व्यवसायिक जो लाभ है उस व्यवसायिक लाभ ने आपके स्वाद को छीन लिया। क्यों छीना? मेरी कुछ समय पहले जो राकेश टिकैत जी हैं बहुत बड़े किसान नेता, उनसे बात हो रही थी कुछ सालों पहले।
शशि जी मैं एक बात में आपको टोकूंगा यहाँ पे। आपने कहा अध्यात्म भाई बहन है
जी,
बट जब एक भाई को दूसरा भाई अगर बोलता है या जब भाई भाई के लिए खून हो जाते हैं तो वो कौन सा अध्यात्म है, हम बात करेंगे इसमें। इसमें से सभा में कौन ऐसा है जो व्यवसायिक अनुशासन को दो शब्दों में बता सकता है, अगर किसी के मन में एकदम ठोस एक मतलब एक लाइन में कि ये व्यवसायिक अनुशासन, जी बताइए। माइक लीजिए, ये माइक इधर है। शशि जी, हम वापस लौटेंगे तो आपसे इस पर विस्तार से जानेंगे। दो शब्दों में, यस।
हेलो, इसका सबसे बड़ा, मैं बिना किसी भूमिका के सीधी बात करता हूँ।
बिना भूमिका के ही बोलिए आप। हाँ,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना हो, आप में से हमारा, प्लीज मंच के लिए नहीं है, आप में से हमारा भाई यहाँ ग्लोबल शॉप में अगर कोई गया हो, अपने यहाँ ग्लोबल शॉप है यहाँ पे, चूंकि ग्लोबल शॉप में जो भी भाई बैठे हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति है। जब भी यहाँ आप कोई सामान खरीदने के लिए जाएंगे, चाहे वो तेल हो, साबुन हो या कुछ भी हो, तो उसकी भावना को आप देख के वहां से सारा का सारा आपको सबूत पता लग जाएगा कि वास्तव में अध्यात्म व्यवसाय में अध्यात्म की क्या भूमिका है। और इस कैंपस से बाहर निकलने के बाद आप किसी के यहाँ गन्ने का जूस पी लिए, किसी से सामान खरीदने के लिए, वो आपको लूटने की भावना से काम करेगा, तो सबसे बड़ा सबूत तो आपको यही देखने को मिल रहा है।
थैंक यू। और ये तो इनका कॉर्पोरेट से संबंध हो गया। पत्रकारिता में, व्यवसाय में अनुशासन कोई दो शब्दों में बताए, सिर्फ दो शब्दों में, जी दो शब्दों में बताना भाई।
बस व्यवसाय चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे कुछ भी, बस ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें किसी से जो मिल रहा है हम उससे ज्यादा देने की भावना उसको रखें, ये नहीं कि उससे हम लूटने की भावना रखें। वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन जितना हमें उनसे मिल रहा है, लेकिन हम उनको देने की अंदर से भावना रखें। सरकंडेंस हो सकता है,
आप बैठिए अगली बार आपसे पूछेंगे,
लेकिन दे सकते हैं
उनको, देना। जी जी, दो दो शब्दों में बताइएगा। मैं इन्वॉल्वमेंट इसलिए आप लोगों का कर रहा हूं ताकि नींद ना आए, बहुत लोगों को मैंने देखा झुटका आ रहा था इसमें। ये माइक उधर है जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास जी। चलो,
सभी को नमस्कार। ये जो टॉपिक है उसका अर्थ ये है कि आपके काम काज में डिसिप्लिन हो, और जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है वो किसी का हित ना रखते हुए अपनी जिम्मेवारी को उस हिसाब से निभाना ही प्रोफेशनल डिसिप्लिन है और गॉड विजडम है।
थैंक यू, वंडरफुल। अब हमारे अगले जो वक्ता हैं डॉक्टर भानु
प्रताप, मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा,
वापस लौटेंगे आपके पास, वापस आएंगे हम, वापस आएंगे। डॉक्टर भानु प्रताप जी हैं। भानु जी, आप भी ब्रह्मा कुमार से जुड़े हैं और मैंने देखा कि आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं। इस शब्दों पे दोनों का जो इन लोगों ने कहा है और मैडम ने भी जो रखा है, पत्रकारिता व्यवसाय हो गया, क्योंकि यहाँ हम दाल चावल आटा और तौलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकारिता के तौर पर ही बात कर रहे हैं। तो ये अगर पत्रकारिता व्यवसाय हो गया है तो उसमें अनुशासन क्या है, ये दो शब्दों में आप बताइएगा।
कोमल भाई का नाम अवश्य कोमल है, पर हैं बहुत कठोर मंच का अनुशासन पालन कराने में।
सर, आप अगर आपके साथ कोमल हो जाएंगे तो इतने लोगों के लिए कठोर हो जाएंगे हम।
मैं देख रहा था कि वक्ता की तरफ आंगड़ा के देखते रहते हैं कि कब बंद हो कब में।
भाई साहब, आप हमारे तरफ खड़े हो, इधर से खड़े हो, बता दो आप, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं।
देखिए साहब, पत्रकारिता में व्यावसायिक अनुशासन का अनुपालन अभी तक तो कहीं नहीं हो पा रहा है, और निकट भविष्य में मुझे होता संभव भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने देश के सभी बड़े अखबारों में काम किया हुआ है, मैं सबकी नस नस जानता हूँ। अखबार में वो चुनाव के समय छापते बड़ा बड़ा कुछ और हैं, अंदर खाने डीलिंग चुनाव में कुछ और करते हैं, सबको जानता हूँ मैं। फिर मैंने तय किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपना काम शुरू किया, अखबार का संपादक और न्यूज पोर्टल। अब इसमें वैसे मैं व्यावसायिक अनुशासन का पालन करता हूँ, पत्रकारिता के मानदंडों का, सूचना शिक्षा संपर्क मनोरंजन का पालन करता हूँ, केवल इसी का पालन करता हूँ, तो मेरा अखबार और मेरी वेबसाइट बैठ जाएगी। इसलिए मुझे कभी कभी रात्रि में एक रेप आदि की खबर भी लगानी पड़ती है ताकि वेबसाइट की रीच बढ़ जाए, तो मैं व्यावसायिक अनुशासन वहां तोड़ रहा हूं। लेकिन अगर नहीं करूंगा तो मुझे दाल रोटी कहां से आएगी, ये बात हो गई। दूसरे, अगर हमको पालन करना है, एक टीम के अनुसार हम बात करें भाई साहब, कुमल भाई साहब, तो एक ऋग्वेदिक मंत्र आता है कि संगच्छोद्धम समदद्धम संभो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हमारे मन समान हो तो हम जो लक्ष्य जो अभीष्ट देवताओं ने प्राप्त किया हम उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आध्यात्मिक का समावेश होगा व्यावसायिक अनुशासन में, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता से हम में संतुष्टि का भाव आ जाता है, बहुत ज्यादा कमाने की भावना खत्म हो जाती है, कम में काम हमारा चल जाता है। तो अध्यात्म से प्यार हमको सिखाया ब्रह्मा कुमारी जी ने, तो बता नीरज जी ने कहा है कि मतलब पहला प्यार हमारा अध्यात्म से ब्रह्मा कुमारी ने सिखाया। नीरज जी ने कहा है कि मौसम कैसा भी रहे कैसी बहे प्यार बड़ा कठिन है भूलना पहला प्यार। तो पहला प्यार हमको यहाँ सिखाया है। बस अनुशासन व्यावसायिक अनुशासन पालन करना है तो हमको एक चीज हमको अपने पुरातन जो हमारे मानदंड उनकी ओर जाना पड़ेगा। जैसे कि अयम निजा परोवेद करना लघुचेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। मेरा है या पराया है यह छोटे लोग सोचते नहीं, व्यावसायिक अनुशासन न पालन करने वाले सोचते हैं संसार के लिए ये वसुधा ही मेरा। अगर ये भावना हमारे अंदर आ गई तो हम हर जगह व्यावसायिक अनुशासन का पालन कर सकेंगे। जो मैंने पढ़ा अभी गूगल में साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका और टॉमसन अमेरिका यहाँ पर व्यावसायिक अनुशासन का पालन किया जा रहा है अध्यात्मता के माध्यम से। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कुछ कह रहे थे आप?
मैं प्रिंट मीडिया से हूँ और लखनऊ से हूँ उत्तर प्रदेश से। अगर हम इस सेंटेंस को जो हमारा आज का टॉपिक है इसको ध्यान से पढ़ें, नीड फॉर स्पिरिचुअल विजडम इन प्रोफेशनल जर्नलिज्म, तो हमें खुद से ही बात समझ आती है। प्रोफेशनल जर्नलिज्म का मतलब है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन की डिमांड के अनुसार बिना कोई हेसिटेट किए बिना कोई एतराज किए पत्रकार विधिवत रूप से काम करे उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक और जो इस समय का एटमोस्फियर है वातावरण है व्यावसायिक वातावरण उसके अनुसार कार्य करे।
थैंक यू।
और जब वो होता है विधिवत तो तब पत्रकारिता का स्तर भी गिरता है, समाज में उसकी वैल्यू गिरती है और तब नीड होती है स्पिरिचुअलिज्म की, क्योंकि वो हमारा जो जर्नलिज्म है वो अगेंस्ट जो मासिद हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनका फायदा नहीं कर रहा। तो तब हमें जो उस पत्रकार को जरूरत होती है कि वो यहां से अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करके इस अध्यात्म के अकॉर्डिंग जो अभी उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक पत्रकार ने फोटो खींचा, उस पत्रकार ने आपको पता होगा आत्महत्या कर ली थी जैसे पूछा गया।
मैं इस पे आपकी तारीफ करते हुए मैं कहता हूं कि जब आप यहां से जाएंगे तो 10 पत्रकार पूछेंगे कि भाई साहब इतना बदल गए हो कहां से आए हो, तो आपको पहले शुरू करना है, बधाई इसके लिए। और इसका मैं जब सहारा समय में काम करता था, क्योंकि अनुशासन से जुड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं, रात को माउंट आबू का टेम्परेचर हो गया था 5 डिग्री पहली बार सीजन में। हमने ब्रेकिंग चलाई रात करीब 8 बजे से ही चला दी। हमारा जो कम्पिटेटिव चैनल था ईटीवी था, उसका रिपोर्टर को चैनल से फोन आ गया, कह रहे तुम कहां हो, सहारा समय खबर चला रहा है कि 5 डिग्री टेम्परेचर, तुम कहां हो, ब्रेकिंग चल रही है, जाओ। वो व्यक्ति रहता था आबू रोड में और रात 10 बजे उसको चैनल ने दौड़ा दिया कि तुम माउंट आबू जाओ। अब वो बेचारा ठंडी में मोटरसाइकिल लेके माउंट आबू गया, यहां आया और खबर करके और वहां से लेके उसने खबर भेजी। तो अगले दिन सुबह मेरे से कहा कि भाई साहब आपने खबर चला दी रात को, मेरे को चैनल ने 10 बजे दौड़ा दिया। मैंने कहा 10 बजे क्यों दौड़ा दिया भाई तुम्हें? बोला कह रहे भाई साहब वो ब्रेकिंग चल गई तो बोलता कि इस पे तो खबर चल रही, तुम क्यों नहीं। तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं कि अगली बार से जब मेरे पास ब्रेकिंग आएगी ना तो पहले मैं तेरे को बताऊंगा, 5 मिनट पहले तुम चलाना, 5 मिनट बाद मैं चलाऊंगा। और उसके बाद आज तक हम लोगों का सिलसिला चल रहा है, कभी किसी रिपोर्टर को इस तरह से, अब डेस्क पे जो लोग बैठे होते हैं वो तो सोचते हैं कि वो रिपोर्टर घास काटने वाला है, उसको दौड़ा दो। तो ये मुझे लगा कि ये अनुशासन होना चाहिए अपने मित्रवत संबंध में, क्योंकि हमें वो पारितोषिक देकर सिंहासन पे नहीं बिठा देगा चैनल, और किसी दिन अगर किसी ने शिकायत कर दिया तो हटाने में देर भी नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो मित्रता का अनुशासन पत्रकारिता में है आजीवन हमारे साथ वो खड़ा रहेगा और वो आज है। तो मुझे ये अनुशासन लगा था तो ये मैंने उदाहरण आपके सामने पेश किया। अब हमारे सामने शशिकांत जी हैं, शशिकांत भगत जी हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के। सर आप तो प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाना नहीं, यहाँ अनुभव बताना है प्लीज। मैं कह देता हूँ क्योंकि पढ़ाते समय वो रहता है भाव, ये प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, तो 2 शब्दों में बताइएगा कि अनुशासन क्या पढ़ाते हैं आप। वो बता दीजिएगा बस दो शब्दों में।
अनुशासन क्या पढ़ाते हैं?
व्यवसाय में अनुशासन, पत्रकारिता को तो व्यवसाय मानने लगे ना आप कि नहीं?
जरूर
मानते हैं कि नहीं व्यवसाय?
बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ तो उसमें अनुशासन क्या होना चाहिए जर्नलिज्म में, जो आप जिज्ञासुओं को पढ़ाते होंगे
जी,
वो दो शब्दों में बताइएगा आप।
ठीक है, मैं इसमें दो तीन कड़ी लेकर के जाऊंगा और कोमल भाई साहब से एक परमिशन लेता हूं, विनती लेता हूं कि, और पवन जी और सिस्टर ने अभी जस्ट एक बात कही है, स्पिरिचुअलिटी और अनुशासन इसका किस तरीके से समन्वय कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से वर्क प्लेस पे उसका इस्तेमाल होता है, हमें प्रयोग करना चाहिए उसका। एक अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी है राजकोट गुजरात में और मध्य प्रदेश में, पूरे अखबार में पूरे मीडिया में आया हुआ है, हम सबको मालूम है। तो वो दिवंगत आत्माओं के लिए हम एक 30 सेकंड का थोड़ा सा हम लोग एक मौन व्रत लेंगे 30 सेकंड के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान में भारतवर्ष में आया। एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक नए तरीके से उसका उद्भव और प्रसार और फैलावा हमने कोविड के बाद देखा। उसमें बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि टेक्निकली दिस इज द ओनली लाइफ वी आर गेटिंग, और जब हम लाइफ की बात करते हैं तो ये लाइफ क्या, दिस इज द ओनली लाइफ दैट गिव अस द रियलाइजेशन ऑफ आवर ओन सेल्फ। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान रख करके और ध्यान से करें, उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा वो भी हमको ध्यान पर रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक मैं नहीं हूं, मेरे साथ मेरे कलीग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉन्शियस लेवल पे जब हम कोई काम करते हैं और उसका परिणाम पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेकर के आते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वहां पे स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस होता है। और अभी हर बार हमने देखा कि बातचीत हो रही थी, इनफैक्ट यहां पर भी बात हो गई, ध्यान से करना, अच्छा ध्यान से बोलना, ध्यान, ये कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस होता है। एक और यहां पे मैं कड़ी जोड़ना चाहूंगा, एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमने देखा है कि लंच ब्रेक का टाइम होता है, भोजन अवकाश, यहां पर भी हमारे सत्र के बाद भोजन अवकाश होगा। क्या, जस्ट मैं एक थॉट रख रहा हूं सभी के सामने, बुद्धिजीवी वर्ग के सामने, यहां पर क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक स्पिरिचुअल ब्रेक मे बी फॉर 15 मिनट्स और 30 मिनट्स रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? अगर ऐसा हम रखते हैं तो जितना जो 8 आवर्स 9 आवर्स का स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर, बहुत सारे जो टर्म्स डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उसको कम डाउन करने में, उसको एलिमिनेट करने में और बेटर परफॉर्मेंस में वो भागीदारी होगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है? बेसिकली देखा जाए तो हार्ट माइंड, हार्ट एंड माइंड, ये हमारा प्रयोग है, यही हमारा प्रयोगशाला है और हम जो है वो हम परिणाम के फल हैं, इसके परिणाम के फल हैं। तो इसको उस तरीके से अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। और कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल, तो अनकॉन्शियस लेवल में जो चीजें होती है होती हैं, लेकिन वहां पे अन को हटा दे, मतलब जो चीजें हमें नहीं करना है उसका पहले से अवलोकन कर लें और इसके बाद उसको सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक करें तो मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ में, डिसिप्लिन में स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा और बेटर परफॉर्मेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो या और भी कोई क्षेत्र हो। धन्यवाद।
थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो स्पिरिचुअल ब्रेक की बात की, एक नई इनोवेटिव आइडिया है और स्पिरिचुअल ब्रेक जिंदगी में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर एक घंटे में आपके पास स्पिरिचुअल ब्रेक होना चाहिए। अगर आप काम करते करते 2 घंटा हो गया है, टेंशन वाले काम में कर रहे हैं, तो उस समय स्पिरिचुअल ब्रेक लगाएं 3 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए और अपने को सुप्रीम गॉड से जोड़ के अपने को एनर्जी भर लें। यह स्पिरिचुअल ब्रेक आपके लिए कैप्सूल का काम करेगा, बेहतरीन, तालियां इसके लिए। इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो बता सकता है कि जो पत्रकारिता है उसमें अध्यात्म के मायने क्या हैं, 2 शब्दों में, या कोई एक उदाहरण देकर बताए कि पत्रकारिता में अध्यात्म से ये हो सकता है? कौन कौन बता सकता है दो शब्दों में? हाँ आदि फटाफट आइए, देर मत कीजिए क्योंकि टाइम बहुत फास्ट भागा जा रहा है। दो शब्दों में बताइए कि पत्रकारिता में अध्यात्म ये है। इतने सारे इतने में तो ब्रेकिंग चली जाएगी।
पत्रकारिता में अध्यात्म बहुत जरूरी है। ये
नहीं जरूरी नहीं, क्या है? जरूरी तो है ही, वो सब लोग कह रहे हैं। पत्रकारिता में अध्यात्म क्या है, उसका एक उदाहरण बताइए आप।
पत्रकारिता में अध्यात्म ये है कि जो भी अध्यात्म से कनेक्टेड चीज है वो पत्रकारिता में आनी चाहिए, और ये सारी बात सारे पत्रकारों को मालूम है। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक मिनट लूंगा सर।
हाँ नहीं, एक मिनट हो गया।
सारे पत्रकारों को ये मतलब अपना घर भी चलाना है। एक जमाने में पत्रकार थे जो जिसके लिए काम करते थे वो बड़े सादे और बहुत अच्छे लोकमान्य तिलक जैसे लोग थे। आज कॉरपोरेट मीडिया के पास पत्रकार है, तो पत्रकारों को अपना घर भी चलाना है। तो जो जो मीडिया हाउस
व्यवसाय मान लिया हमने, पत्रकारिता को व्यवसाय मान लिया घर चलाने के लिए, लेकिन उसमें अध्यात्म क्या वो बताइए आप।
सर आध्यात्मिक यही है पत्रकारिता, हमें जो भी हम लिखते हैं उसमें हमारी भावना साथ में लिखे। साथ में ये होता है कि जैसे कोई भी घटना होती है, मान लो कोई हमारा जवान शहीद होता है, हम वहाँ पत्रकारिता करने जाते हैं, तो हमें उस माँ और उस परिवार के साथ आध्यात्मिक होते हुए उनकी भावनाओं को हमें लिखना है, वही आध्यात्मिक आएगा तभी।
वंडरफुल। अगर किसी की बेटी अगर घर से भाग के अगर किसी लड़के से शादी कर ली है, और वह खबर लिखते समय आप ये बात ध्यान रखते हैं कि इसकी बेइज्जती ना हो, इसका भी प्रतिष्ठा बनाए रखे, मुझे लगता है कि अध्यात्म है या नहीं? या अध्यात्म हो सकता है ना। या अगर किसी के कोई अगर किसी की चीज है, अगर उसकी खबर लिख रहे हैं आप, और उस खबर में आग लगाने के बजाय अगर टोन डाउन करके सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कर देते हैं, तो क्या अध्यात्म की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? ये इसके लिए हम जानेंगे। हमारे आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
अनुशासित और लोक मंगल कामना की भावना होनी चाहिए।
बस वंडरफुल वंडरफुल। भावना, ये शब्द जो भावना शब्द है इसका मतलब समझिए आप। इतने दिनों से आप यहाँ जो है ना, आप इस भावना को ढूंढिए कि भावना क्या है। अब हमारे अगले वक्ता जो है गंगाधर भाई को मैं थोड़ा आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं विनोद सोनी जी को ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हिस्सा में बोल दिया हूँ, इसलिए अगले वाले में आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। विनोद सोनी जी हैं। सोनी जी आप बताइए कि जो पत्रकारिता में अध्यात्म क्या, पत्रकारिता तो कर ही रहे ना आप गेस्ट फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट, अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में क्या अनुशासन होना चाहिए या उसकी जरूरत क्या है, थोड़े से शब्दों में बताइए।
नमस्कार सभी साथियों को, मैं डॉक्टर विनोद सोनी एसोसिएट प्रोफेसर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली पंजाब।
आपके आने के पहले मैं बता चुका था लेकिन आप आए हैं तो इसलिए मैंने नहीं बताया। जी थैंक यू।
तो आध्यात्मिकता होनी चाहिए कार्यस्थल पर, मैं इस विषय पे दो मिनट के लिए जो ये शब्द कहना चाहूंगा कि जब भी हम काम करते हैं तो अपने ऑफिस में कभी न कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हमें किसी से जेलसी फैक्टर भी होती है, हालांकि मुझे नहीं होती, काफी लोगों को होती है, ठीक है। तो इसको जो बचाव है आध्यात्मिकता ही है। मैं डॉक्टर वर्मा जी 2013 से इकट्ठे जॉब करते हैं, तो जिस कॉलेज में हम जॉब करते थे वहां पर बहन जो ब्रह्म कुमारी बहन जी हैं वो आती थी, हमें आध्यात्मिकता पर व्याख्यान देती थी, तो उस कॉलेज का पूरा माहौल बिल्कुल नॉर्मल शांत रहता था। और एट प्रेजेंट हम पंजाब स्टेट में काम करें, वो पहले से ही गर्म है, बॉर्डर स्टेट है, तो वहां पर भी आध्यात्मिकता होनी जरूरी है कार्यस्थल पर, क्योंकि लोगों को हमारे अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा रहता है और हमें एक दूसरे से, काफी ऑफिस के लोगों को जेलसी फैक्टर भी रहती है। इसका जो सॉल्यूशन है आध्यात्मिकता और मेडिटेशन है। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे हम अपने आप को शांत, अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, यही मेरा कहना है।
वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बधाई। इन्होंने जो कहा कि अगर हमारे अंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आइए, अगर हम अपने अंदर, हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं है तो हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इस नियंत्रण का अर्थ समझिए, अगर आपको कोई गाली दे रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, वो कमजोरी नहीं है, वो अध्यात्म की देन है कि आप समझ रहे हैं कि सामने वाला पागल हो गया है। जैसे अगर कोई मरीज आपके सामने पागल व्यक्ति आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? अरे कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पागल हो गया है। जब व्यक्ति आपे से बाहर होकर गाली देता है तो वह अपने अंदर से पागल हो गया होता है। और अगर यह समझ आपके अंदर आ जाए और आप चुपचाप सुन रहे हैं और ठंडे होने के बाद जब उसको बात करेंगे तो ये मुझे लगता है कि अध्यात्म का अनुशासन है। राइट जी, कुछ कह रहे हैं आप तो बोल चुके हैं ना।
हाँ, कहना है मुझे एक सिर्फ
आपने, प्लीज दूसरे को
एक मिनट
दूसरे को अरे दूसरे का हिस्सा मत लीजिए
सर,
दूसरे का हिस्सा मत
लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पत्रकारिता व्यवसाय में हमें अनुशासन कैसे लाना है, तो अनुशासन लाने का एक चीज है कि हमें अभी हमारे मतलब सब जगह कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के चक्कर में हर मतलब ये चाह रहा है कि अनुशासन भूल चुका है उसमें। आज हम आज के अगर 10 साल 15 साल पहले देखें तो एक ही दूरदर्शन चैनल था या डीडी मेट्रो था, तो वहां पे उसमें अनुशासन होता था, उसको जो रिपोर्टर या न्यूज एंकर होते थे उनको हम सुनते थे तो उनमें वो भावनाओं से न्यूज पढ़ते थे।
जी,
अभी न्यूज वैसा नहीं है।
जी जी, थैंक यू थैंक यू। क्या है, अब आप बोलेंगे तो दूसरा हमको कहेगा कि उनको दो बार चांस दे दिया और आप जो है पाठ पढ़ा रहे हैं खड़ा होकर स्टेज पर और हमारा हिस्सा नहीं आने दे रहे। अब हमारे बीच में गंगाधर भाई हैं। गंगाधर भाई हमारे ओम शांति मीडिया पत्रिका हमारी निकलती है उसके संपादक हैं और राजयोगी हैं। पूरा जीवन इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज में दिया है। जब जवानी थी इनकी कमाने की मौज मस्ती की तो इन्होंने ये रास्ता चुना और आज इस संस्थान में हैं। आप बताइए कि अध्यात्म अनुशासन और आप तो खैर ओम शांति मीडिया निकालते हैं तो उसमें तो पीत पत्रकारिता का कहीं जिक्र ही नहीं होता, केवल ज्ञान की गंगा ही होती है, लेकिन व्यवसायिक स्तर पे क्या होना चाहिए वो आप दो शब्दों में रखिए।
ओम शांति। व्यवसाय इसी शब्द तो मैं समझता हूँ काफी क्लियर हो गया। स्पिरिचुअलिज्म है जो, अध्यात्म वो है जो आत्मा का संयमित और जो आत्मा के जो निजी संपत्ति है जिसको हम कहें सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता, उसका संरक्षण करते हुए उसका ऑनेस्टली पालन करते हुए अगर हम दूसरे के साथ जाते हैं तो सबका उसमें कल्याण है। वहां प्रोटेस्टेंटिज्म भी रहेगा, साथ साथ स्वयं का भी हित होगा और दूसरे का भी कहीं भी अहित नहीं करेगा। ये है अध्यात्म। हमने यहां सीखा है कि ये कैंपस में जो भी आया है, जो भी यहां सर्व कर रहे हैं, जो भी आपने देखा होगा, कोई लेने की भावना नहीं है, सबको देने की भावना है। स्पिरिचुअलिटी की पहली परिभाषा है खुद संतुष्ट तृप्त होकर देने की वादा रखता है, तो औरों के लिए जीता है असली में। तो अध्यात्म और आत्मा, ये आत्मा का जो निजी हमारा जो वास्तविकता है उसके साथ जीना, उसको ही अध्यात्म कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कहां पर भी आप हो, अगर आप उससे इर्द गिर्द रहेंगे तो किसी को भी आपसे दुख नहीं पहुंचेगा और खुद का तो हित होगा ही लेकिन दूसरे का भी कभी अहित नहीं होगा। ये है अध्यात्म। ओम शांति।
वाह वाह, आपने देखा गागर में सागर भर दिया इन्होंने। अब हमारे सामने अतुल गौतम जी हैं, उनके पहले मैं डॉक्टर दीनदयाल मित्तल जी को लेना चाहता हूं। साहब आपकी क्या है, लास्ट में तो आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में मेरा नंबर आएगा, मैंने आपका साथ तरफ भी कर दी, आपको मैं ऊपर ले रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने सारे लोगों को सुना आपने, इतने लोगों को सुना क्योंकि चेयर आप ही कर रहे हैं इस चीज को, तो उसमें कोट बता दीजिए दो चीजें जो समझ के आई।
ओम शांति।
आप एडिटर इन चीफ हैं श्रीमत टाइम्स, हमारे यहाँ भगवान की श्रीमत पे ही हम लोग चलते हैं। मैं आपने क्या अखबार के लिए श्रीमत बनाया है, वो हम लोग यहाँ श्रीमत भगवान की श्रीमत पे चलते हैं तो ये सब एटमॉस्फेयर देख रहे हैं।
ओम शांति। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी देवात्माओं को नमन करता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि मैं जो कुछ आज कह रहा हूं वो स्वयं परमात्मा के वचन है, मेरे कोई वचन नहीं है। अगर इसलिए कोई गलती भी अगर हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए, माफ तो नहीं कहूंगा वो नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है परमात्मा के कहे वचन जो है जब आप मैं कहता हूं इस शरीर से तो गलतियां हो जाती है। पिछले 3 दिनों से नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि एवं मूल्य इस विषय पर चर्चा चल रही थी, बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत ही देश के प्रख्यात हमारे पत्रकार बंधु आए और चर्चा हुई, चर्चा बड़ी सार्थक रही। उस चर्चा में नहीं जाके आज की चर्चा में जा रहा हूं, जहां दिखाया है कि व्यावसायिक अनुशासन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हो। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है इसके बारे में बता दूं कि आंतरिक स्वय मैं क्या हूं, जब इसका परमात्मा के साथ में जब मिलन होता है, संबंध स्थापित होता है, और उस समय आप जब भौतिक चीजों को जब एक तरफ रख देते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है वो ही आपका आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। ये बहुत ही सूक्ष्मीकरण बात है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं आज वो ज्ञान कम है, नॉलेज। तो इसलिए मैं दो शब्द आपसे कहता हूं, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज जो हम आज ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, वो नॉलेज है, और विजडम प्रज्ञा, वो जो विजडम जो हमें मिलती है वो उस परमपिता परमात्मा से मिलती है, और उस परमपिता परमात्मा से विजडम लेने के लिए हमें परमात्मा के साथ में अपना सहयोग करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। अब मैं आता हूं, मैं चूंकि आज समय की जो थोड़ी सी अपनी व्यवस्था है उसको देखते हुए व्यावसायिक अनुशासन के बारे में बताता हूं। व्यावसायिक अनुशासन क्या है? तो व्यावसायिक अनुशासन वह अनुशासन है जिसमें एक प्रोफेशनल अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में, पूर्ण नैतिकता के साथ में और पूर्ण योग्यता के साथ में देता है, और इन तीनों चीजों से जो देता है, प्रामाणिकता के साथ में जो देता है, उसमें गलतियां होने के कम चांसेज होते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। किंतु आज मैं देख रहा हूं कि हमारा जो मीडिया कर्मी है, हमारे जो प्रोफेशनल्स है, बहुत बड़े दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मीडिया जो है हमारे कॉरपोरेट हाउसेज के कंट्रोल में है, और कॉरपोरेट हाउसेज का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, उनका अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, उनका अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, उनका व्यूज बढ़ाने के लिए। तो सुबह से शाम तक हमारे मीडिया कर्मी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर आने के भी तरीका है। उसका तरीका जो सबसे बड़ा तरीका है वो जहां पे आप बैठे हुए, ये जो जगह है, ये जगह एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि 145 देशों में इसकी प्रतिस्थापना हो चुकी है, और वहां से जो है इसके ऊपर बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक रूप से रिसर्च हो रही है, और उन रिसर्च का आधार जो है मैं बता देता हूं कि रिसर्च का आधार यही है कि जब आप जब ध्यान में जाते हैं और आप उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको खुद को ज्ञान होने लगता है कि जो अब तक हम जो कर रहे थे वो हम जो है ज्ञान नहीं था, वो हमारी एजुकेशन था। और जब ध्यान थोड़ा लगाएंगे, परमात्मा से थोड़ा मिलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन में जाएंगे, सिस्टर शिवानी ने कल कहा था तीन चीजों के बारे में इसको प्राप्त करने के लिए, कि आप सुबह के अमृत वेला मुरली पढ़ना, और मुरली पढ़ करके उसके बाद में उसकी चर्चा करना, दूसरे के साथ चर्चा करके अपने उस ज्ञान को, और इसके साथ ध्यान, ध्यान के साथ में एक धारणा भी है, कुछ धारणाएं भी है इनकी, कि पवित्रता है, वो है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में जानने से बहुत बड़ा समय की बात देता है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं अनुशासन क्या होती है। पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मीडिया कर्मी जो है, मैं बात बता रहा हूं सन 70-80s के मिड की, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, और पत्रकारिता उस समय प्रोफेशन नहीं कहलाता था, पैशन कहलाता था, पैशन। प्रोफेशन जो बाद में हमने इनको कहना चालू किया प्रोफेशन, जब से जो है थोड़ा सा हापादापी बढ़ी है तब से प्रोफेशन। तो उस समय सर्वप्रथम तो पत्रकारिता का कभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है समावेश था, पढ़ते हुए भी। मैं डिग्री कॉलेज में जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस समय, तो हमारी कॉलेज में जो एक फंक्शन था उसमें जहाज रानी मंत्री हुआ करते थे राज बहादुर सिंह, उस समय तो उनका आने का प्रोग्राम था, तो पहले दिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो है प्रेयर में हमें बताया कि कल वो ये प्रोग्राम है, सब आप जानते हैं अपनी अपनी सबकी भूमिका थी, तो भाई आप में से जो लोग जो है जो कुछ पत्रकारिता में जो कुछ पैशन रखते हो, प्रोफेशन नहीं कहता उन्होंने पैशन, तो वो उनके लिए मैं आपको कुछ समय दिला सकता हूं मंत्री जी से, कोई बात नहीं। हम तीन चार पांच लोगों ने अपना अपना नाम दिया, मंत्री जी का अभिभाषण हो गया, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीसी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें ध्यान था ही नहीं, पहले तो हम छोटी मोटी खबरें लिखा करते थे और भेज दिया करते थे राजस्थान पत्रिका नवजीवन को, इनको सब भेजा करते थे। राजस्थान में मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, वो कॉलेज उस समय जो है तहसील हेडक्वार्टर होता था, अब तो जो है जिला हेडक्वार्टर हो गया। इतने हमारे पास संचार के साधन ही नहीं हुआ करते थे, हम भेजा करते थे, फैक्स कर देते थे, कभी कभी जो स्पीड पोस्ट भी कम होती थी, और कभी कभी अच्छा एक जो हुआ घटना घटी उसमें जो है हमें ज्ञान हुआ कि सब त्वरित समाचार देने के लिए जो है आपका टेलीफोन का माध्यम, तो टेलीफोन भी वो चोंगे वाला होता था, चोंगे वाला अगर आपकी लाइन मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो उसके बाद में जब वो कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस जब हम जब गए तो पैसे के साथ, हम तैयारी के साथ गए थे, तो मंत्री महोदय जब कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने लगी तो उन्होंने कहा कि आप कौन से पेपर से जुड़े हुए हैं।
मित्तल साहब जो
संक्षिप्त ही रखूंगा इसको थोड़ा सा,
नहीं मैं चाहता हूँ कि एक आध लोगों का क्वेश्चन है, मैं आपसे ही लूँ उसका।
हाँ, तो कोई बात नहीं
जी।
तो आपको बताऊं कि उसके बाद आप कौन से संस्थान से जुड़े हैं, हम तो कोई संस्थान से, इसी संस्थान से जहां से हम पढ़ रहे हैं वही जो इन संस्थान से, तो कह रहा कि आप लोगों का जो तजुर्बा आपका जो इस तरह का जो स्तर दिखाई दिया मुझे वो किसी अच्छे प्रोफेशनल से कम नहीं है, बहुत अच्छी बात है
जी।
हम उसके बाद में अपना थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना था उसका जरूरत का। अब मैं आता हूं अनुशासन, अनुशासन क्या
सर होता है? सर वो एक आध दो लोगों का क्वेश्चन है, मैं आपसे ही लूंगा, अनुशासन पे ही है
थोड़ा,
तो एक एक बैठ बचे हैं उनका अपन
विचार लेते हैं। मुझे दो तीन मिनट, दो मिनट और दीजिए बस, खाली दो मिनट।
हाँ सर जी,
अनुशासन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुशासन क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। मुझे दो महीने पहले जो है लंदन जाने का अवसर मिला, वहां मैंने अपनी बहू से कहा, बेटे मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल हाउस में जाऊं, तो उनका पापा यहाँ तो ग्लोबल हाउस ऐसा नहीं कि आप जैसे वहां चले गए ब्रह्मा कुमारी में चले गए, यहां तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। कोई बात है, टाइम ले लिया, टाइम नहीं लेके वहां जब पहुंचे तो डेढ़ घंटा हमें जब टैक्सी में लगा, तब तक जो जो सिस्टर थी, सिस्टर जेमिनी थी, वो अपनी दूसरी मीटिंग में लग गई। हम वहां 10 मिनट तक इंतजार करते रहे, तो हमारे अंदर एक संकल्प आया कि यार हम वहां से इतनी दूर चल करके आए हैं, लेकिन हम 10 मिनट लेट थे, हम 10 मिनट लेट थे। उसके बाद मैडम आई, जेमिनी मैडम आई, और उन्होंने हमें वही समय दिया। और आपको बताऊं संस्कार की बात बताऊं, उन्होंने जो संस्कार मेंटेन किए, जो उन्होंने वहां पे दिवाली का समय था, जो रंगोली जो बनाई, जो रंगोली में उन्होंने जो कालीन जो बना रखा था, कालीन ऐसा था जैसे मुझे ये सपने में नहीं लगा कि यह रंगोली है। तो मैं जब उधर जाने लगा तब पता चला कि थोड़ा सा भाई जी थोड़ा सा बच के जाना, तब पता चला कि रंगोली है। तो उन्होंने इसे सारे इसको ज्वलंत रखा है आज भी, और वो कहां से कहां पहुंच गए। मैं खाली एक मिनट और लूंगा कि मैं यहां कैसे आया।
सर टाइम हो गया है सर, थैंक यू। मैं आपका आपने जो अनुभव शेयर किया ब्रह्मा कुमारी जी के साथ में, जो आप इनको सुन रहे थे, आप जिस तरह की बात आप बोल रहे थे, बिना अध्यात्म के ऐसे शब्दों का निकलना मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद इन्होंने श्रीमत एक अखबार शुरू कर दिया, तो श्रीमत इनकी जिंदगी में कितना घुला मिला होगा आप समझ सकते हैं। इसके लिए सर के लिए ताली बजा दीजिए आप। और हमारे लास्ट जो वक्ता है अतुल गौतम जी, अतुल जी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, आप गेस्ट फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट। आप मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं भी एनडीटीवी देखता हूं, आप एनडीटीवी में रहे हैं 2017 तक, फिलहाल एनडीटीवी मैं ही पूरा जिला रिप्रेजेंट कर रहा हूं पिछले 10 सालों से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो फील्ड में भी कभी रहे हैं कि नहीं, या सीधे डेस्क पे गए हैं एनडीटीवी फील्ड में? आप ये बता दीजिए कि फील्ड पे जो रिपोर्टर काम करता है, बड़ी जो दुर्दशा वाली जो स्थिति है वो फील्ड रिपोर्टर की है। डेस्क पे लोगों को तो पेमेंट मिलता है हर महीने, लेकिन जो गांव में जो पत्रकारिता करते हैं, जो जिले लेवल पे पत्रकारिता करते हैं, जो स्टोरी बेस पे पत्रकारिता करते हैं, वहां पे अनुशासन की सारी मर्यादाएं टूटती भी हैं जुड़ती भी हैं। ऐसी स्थितियों में इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए, व्यवसायिक अनुशासन में अध्यात्मिक ज्ञान, ये बता दीजिए।
एक मैं मैं आपको भी बता दूं
सर, सर आप रुक जाए, आपको उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे इनसे।
मैं भाई कोमल जी की बात को आगे लेते हुए बताता हूँ।
सर मैं आपसे उनसे गौतम जी से बात कर रहा था। आपसे सवाल दूसरे पूछेंगे, मैं तो
कोई समस्या नहीं है सर, आप अपनी बात रख सकते हैं।
सॉरी अगर बुरा लगा हो।
बहुत क्षमा के साथ मैं आपसे बोलूंगा सर। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है प्रोफेशनल डिसिप्लिन में आध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत क्षमा के साथ मांगूंगा। और इसका बड़ा कारण यह है, मुझे आध्यात्म की आवश्यकता हो सकती है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन को आध्यात्म की आवश्यकता नहीं है या नहीं है, या मेरा विषय है ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। महर्षि रमण से किसी ने सवाल पूछा, आर यू एनलाइटेंड।
आपके काट दूं यहां पर,
मैं एक मिनट
आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं
जी,
मैं आपको काट रहा हूं। अगर सर हमारे पास BMW गाड़ी है तो उस गाड़ी का चलने में असर दिखेगा या नहीं, ये बता दीजिए हमें।
अगर हमारे पास
आप कह रहे हैं कि अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है व्यवसाय में, आपको चाहिए, तो अगर आपके अंदर अध्यात्म होगा तो क्या व्यवसाय में दिखेगा नहीं, वो बता दीजिए आप। जो आपने
मेरी समस्या ये है कि अगर मुझे चलना है तो मेरी ये समस्या ही नहीं है कि मेरे पास BMW है या मारुति 800 है। अगर मुझे चलना है तो मुझे चलना है
जी,
उस चलने के लिए BMW की आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता है BMW की, चलने की आवश्यकता नहीं है BMW की। एज ए प्रोफेशनल मेरे लिए स्पिरिचुअल होना आवश्यक हो सकता है, मेरे प्रोफेशनल के लिए मेरा स्पिरिचुअल होना आवश्यक है या नहीं है, ये मेरा विषय ही नहीं है। जब तक मेरे में यह चिंता है कि सामने वाला करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक मेरे अंदर आध्यात्मिकता कितनी आई है मुझे नहीं पता।
सर ये बता दीजिए कि अगर किसी अधिकारी ने कुछ कह दिया आपको और आपने मौका ढूंढते रहे, अरे मिल गया, अच्छा ठीक है इसको टांग दो, तो यहां पर उसकी जरूरत है कि नहीं, ये बता दीजिए।
जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में एक इंसिडेंट जरूर होता है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया। अभी सर ने एक एग्जांपल दिया, कोई कुछ कह रहा था वो तो पागल हो गया, मैं उसे कभी पागल का लेबल नहीं दूंगा। उस समय पर उसका और मेरा रिलेशन ऐसा था जो शायद कटुतापूर्ण था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो पागल है और वो पागल हो गया है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और मुझे स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है कि मुझे उसे लेबल पागल करना है कि नहीं करना है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में किसी से मेरी अनबन हो गई है, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया है और मैंने कह दिया है कि ये अनप्रोफेशनल है, अनकूत है, नॉन स्पिरिचुअल है, उस समय का इंसिडेंस ऐसा था कि उसने मुझे कुछ कहा जो मेरे और उसके बीच के रिश्ते में मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पागल है या नहीं है ये मेरा विषय है ही नहीं।
आपने सर बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी और का प्रभुत्व हो जाए, आदमी विवेकहीन हो जाए उसके यहां, उसका अपना विवेक काम नहीं कर रहा हो, वो मानवता की सारी हदें तोड़ रहा हो, उसको अच्छे बुरे भाई बहन का संबंध का पता नहीं, उसको किस श्रेणी में रखेंगे आप, ये तो बता दीजिए।
मैं कौन होता हूं किसी को किसी श्रेणी में डालने वाला। मैं सर, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए सर। एक कॉन्सेप्ट है, एडमिन हुसरो ने दिया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है शुडिज्म। वो शुडिज्म का मतलब ये है, यू शुड बी लाइक दैट
इन
ऑर्डर टू दिस। मैं सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत बार जिंदगी में ऐसा हुआ है, मैं NDTV में काम किया है, रवीश के साथ मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, बहुत मतभेद होते थे, लेकिन मैं ये कह दूं कि रवीश तो है ही ऐसा। उस समय पर रवीश का और मेरा संबंध ऐसा था और रवीश ऐसा है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है, और ये जो टॉपिक है ना सर, स्पिरिचुअलिज्म इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, इसमें मूल समस्या क्या है बताऊं? मेरी समस्या, हम फूल को तोल सकते हैं, खुशबू को तोल नहीं सकते। हम स्पिरिचुअलिटी को भी नापने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम डिसिप्लिन को नाप सकते हैं, जैसे हम प्रोफेशनलिज्म को नाप सकते हैं। सर मैं क्षमा
चाहूंगा, सर सवाल नापने का नहीं है, अतुल जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार पहले सोशल होता है, पत्रकार इस देश का नागरिक भी है। हम ये कहकर कि हमें क्या फर्क पड़ता है, इस अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।
अरे गोपाल जी,
ये पहले
मैंने ये कहा ही नहीं कि मुझे
फर्क हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा।
मैंने ये कहा ही नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्किन जलेगी तो मुझे दर्द होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आग को गाली देना शुरू कर दूं, समस्या यहां से शुरू होती है।
यस सर, थैंक यू। बेहतरीन जी।
मैं महर्षि रमन का एग्जाम्पल दे रहा था। महर्षि रमन से किसी ने कहा कि आप स्पिरिचुअलिज्म से पहले क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं माली था और पौधों को पानी देता था। बोले आप इनलाइटनमेंट के बाद क्या करते हैं, बोले मैं माली हूं और पौधों को पानी देता हूं। भगवान का शुक्र है कि उससे अगला सवाल ये नहीं किया, माली होने के लिए स्पिरिचुअलिज्म की क्या आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता रमन को होगी, मुझे होगी। ओम शांति में सारी बहनें प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत क्षमा के साथ कहूंगा, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है नापने का कि मैं नाप सकूं कि सारी बहनें स्पिरिचुअली आध्यात्मिकली उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हैं। प्रोफेशनली बहुत अच्छी हो गई हैं। मेरे पास पैमाना नहीं है। आप में से किसी के पास स्पिरिचुअलिटी को नापने का पैमाना हो तो मुझे दें। गुड़ मैं भी खा रहा हूं, गुड़ आप भी खा रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए गुड़ दोनों के लिए कितना मीठा है, अगर कोई पैमाना हो ये नापने का तो मुझे दें। हम कबीर को कबीर के अध्यात्म की वजह से जानते हैं, उनके बुनकर होने की वजह से नहीं जानते। भगवान का शुक्र है कबीर से किसी ने ये नहीं कहा बुनकर होने के लिए प्रोफेशनलिज्म की या अध्यात्म की कितनी आवश्यकता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर?
जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
जी
सर के पॉइंट को मैं किसी भी तरीके से काउंटर करने के मेरा
काउंटर मत करिए
किसी भी तरीके से। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं पहले मांग लेता हूं
काउंटर।
लेकिन मेरा एक पॉइंट यहां पर है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो सब जगह है, और उसकी आवश्यकता है या नहीं है दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट उसकी जो प्रेजेंस है वो सब जगह तो है। हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, राइट? फिजिक्स हमने कभी कहीं देखा है? नहीं देखा है। बट फिर भी हम देखा जाए तो मैटर एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखें तो नेचर प्रॉपर्टीज माइंड एंड कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट है? नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों का अपना अपना एक ध्येय है, अपना अपना महत्व है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। दैट इज अ मैटर ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। सॉरी सर, मैंने आपकी बात को काउंटर नहीं
किया। काउंटर नहीं किया आपने, मैं काउंटर सवाल ही नहीं कर रहा हूं।
मैं रिस्पॉन्ड कर दूं?
जी सर,
मैं फिजिक्स का छात्र रहा हूं, मैंने एमएससी फिजिक्स किया है। लाइट की ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, इट इज बोथ वेव एज वेल एज मैटर, बट इट बिहेव्स एज पर द सर्कमस्टांसेस। जहां आपको लगता है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअल होइए, लेकिन स्पिरिचुअल होकर ये अहंकार मत पालिए कि मैं स्पिरिचुअल हूं। प्रोफेशनल होकर ये गिल्ट मत पालिए कि मैंने क्या पाप कर दिया, फिर मौका आएगा, फिर पुण्य कर लेंगे।
भाई साहब, कोमल भाई, मुझे एक बात कहनी है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो सर्वे भवंतु सुखिनः की कामना कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, केवल अपने सुख की कामना करेंगे।
भाई बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जी।
एक मैं बोल दूं, ये जो स्पिरिचुअलिज्म वाला शाब्दिक है ना, आध्यात्मिक, आपको क्या लगता है ये कितना पुराना है? कितना पुराना है? मेरे भाई ने भी बात की, केल्विन कार्टर की एग्जाम्पल दिया। बहुत भारी हृदय से मैं कहूंगा, काल्विन कार्टर मुझसे कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल था वो फोटोग्राफ लेने के बाद, क्योंकि भाई साहब की बात अधूरी रह गई। 1993 का फोटोग्राफ था और 96 में वो इस बोझ को सह नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया।
बिल्कुल सही।
प्रोफेशनलिज्म का एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। हम उस देश से हैं जहां आध्यात्मिकता बहुत हाई है। मैच फिक्सिंग का एक एपिसोड हुआ, साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे हेंसी क्रोनियस, जिन पे आरोप लगा कि आपने हमारे देश के कैप्टन अजहरुद्दीन को रिश्वत दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि हां मैंने रिश्वत दी है, रिजाइन किया, पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। हम आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाई पर भी आज तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हां मैंने रिश्वत ली है।
आदरणीय, यही 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 परिणाम होता है। अगर हम संवेदनहीन होंगे तो जिस तरह से फोटोग्राफर ने कर्तव्यहीनता की थी, उसका परिणाम आत्महत्या के रूप में आया है, वो होगा, निगेटिव होगा। अगर हम अध्यात्म अपनाएंगे तो उसका परिणाम पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तय है, और समझ जाएगी स्थिति। हम
अरे भाई सुनिए, ऐसा है कि ये डिबेट का विषय नहीं है, आप समझिए इस चीज को। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है और चाहता है कि हमारा मित्र मेरे साथ निस्वार्थ व्यवहार करे, ये स्पिरिचुअलिज्म वैल्यूज उसी से आती है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे को गाली देता और चाहता कि सामने वाला मुझे गाली दे? क्योंकि हर सोल की क्वालिटी होती है निस्वार्थ प्रेम, आनंद, शांति, वसुधैव कुटुंबकम। वो बहुत बड़ा बेईमान होगा लेकिन ये उम्मीद जरूर करेगा कि सामने वाला मित्र मेरे साथ ईमानदारी से रहे। ये होता है कि नहीं होता है? तो अध्यात्म का मतलब कोई अलग की टोकरी नहीं है, ये स्पिरिचुअल ये हमारी आत्मा के गुण हैं अपने, जैसे गुड़ का गुण मीठा होना है, आत्मा के भी ये स्वभाव है कि वो दूसरे से प्रेम चाहता है, मतलब वो निस्वार्थ प्रेम चाहिए उसको, उसकी क्वालिटी है। अगर आनंद चाहता है बिल्डिंगों में बैठ के 20 लाख की गाड़ी में बैठ के अगर सुकून की तलाश कर रहा है, मतलब उससे नहीं मिल रही है, आत्मा की क्वालिटी पे घर नहीं उतर रहा है, तो ये आत्मा का सुकून कुछ और है। उसको हम अध्यात्म से इसलिए कहते हैं कि जब आदमी आत्मा के बारे में अध्ययन करता तब इन सारे गुणों की चीज उसके सामने आती है। जैसे बारिश आती है सब कुछ ठंडा हो जाता है क्योंकि उसका गुण है ठंडा कर देना। तो आत्मा के जो गुण हैं, प्रेम है, आनंद है, शांति है, पवित्रता है, दिव्यता है, वसुधैव कुटुम्बकम है, हर व्यक्ति की इसकी डिमांड है। अगर आज मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर हैं, आज भी मंदिरों और मस्जिदों का चक्कर इसलिए काटते हैं कि उससे वो सुकून नहीं मिल रहा है जो आत्मा का है, उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत होती है, ऐसे होता है। तो इसलिए जैसे सर ने कहा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और देखिए कर्म ही पूजा है कहा गया है। तो जब व्यक्ति अपना कर्म कर रहा होता है, अब उस समय भाव और भावना क्या होती है वो बड़ी मायने रखती है। अगर किसी के द्वेष भाव से अगर आप खबर लिख रहे हैं, वहां आकलन कर लीजिए। अगर यह सोच रहे हैं कि इससे आम लोगों का भला हो जाएगा, वो सोच लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, इससे हमारा परिवार भी प्रभावित होगा, दूसरा भी प्रभावित होगा, वो सोच लीजिए। आपकी मानसिक स्थिति स्टेबल रहे, लिखते हुए संतुलित रहे, ये सोच लीजिए। इसके लिए अध्यात्म की जरूरत है, और अध्यात्म कोई टिकिया नहीं है। अध्यात्म अपने बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में अध्ययन करना, और उसकी जिसकी चाहना हमें है उसको एक्सप्लोर करना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म कोई डिबेट का विषय नहीं है, अध्यात्म इम्प्लीमेंटेशन का है जिसके लिए हम दुनिया में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग जो है, ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग यही करता है। हमारे यहां न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ये देह के धर्म तो हमने आपने बनाए हैं, भगवान ने थोड़ी बनाए। ये तो एक बाप के जैसे 10 बच्चे होते हैं, वैसे परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। किसी ने काला कपड़ा पहन लिया, किसी ने सफेद कपड़ा पहन करके वर्गीकरण कर दिया, ये तो हमने आपने किया है। लेकिन हम सब परमात्मा के बच्चे, हम आत्माओं की क्वालिटी है, 6-7 जो एलिमेंट गुण हैं वो हम सबके हैं, चाहे वो किसी भी कोई प्रोफेशन में हो, और उसमें रहते हुए लगातार उसकी तलाश करती है। अभी कोई भाई कह रहे थे कि अभी जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, बच्चा जब पैदा होता है हमारे घर में, बहुत हम ध्यान रखते हैं कि बुरे संगत में न पड़ जाए, किसी को गाली न दे, कोई नशा न करे, कोई किसी के लिए झूठ न बोले। और जब वह बड़ा होता है, नशा भी करता है, झूठ भी बोलता है, गाली भी देता है, झगड़ा भी करता है, चोरी भी करता है। हम जो बच्चों में बचपन में अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा तुम नहीं करना, लेकिन हम शाम को दारू जरूर पीते हैं। तो इससे तो अच्छा बच्चे को क्यों हम बचाते हैं, आप समझ लीजिए ना, बच्चे को क्यों बचाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जब आत्मा पैदा होती है, आत्मा आती है, तो वह आत्मा शुद्ध होती है। तो बचाते हैं कि शुद्धता बनी रहे, तो ये बच्चा हमारा आगे चल के श्रेष्ठवान, चरित्रवान, नाम करने वाला होगा। लोग कहेंगे अरे फलाने का लड़का बहुत बढ़िया है, फलाने का लड़का बहुत बढ़िया किस आधार पर कहेंगे? क्या चोरी करेगा, गुंडई करेगा, डकैती करेगा, किसी की ठगी करेगा? अगर बिजनेस करेगा तो 5 रुपया की जगह 50 रुपया लेगा, उसके लिए कहेंगे कि ये फलाने का लड़का अच्छा है? नहीं, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करेगा, मधुरता से काम करेगा, कमाएगा, लेकिन उसमें भावना उसकी अच्छी, तब कहेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। तो बहुत अच्छा इंसान की जो डिफिनेशन है वो स्पिरिचुअलिज्म के जरिए ही पैदा होती है, और वह आत्मा का अध्ययन के जरिए होता है। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग में यही सिखाता है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कहीं भी हो। ओम शांति। आप सबने ऐसी भी, मैंने आपसे वायदा किया है,
दो बात कहना,
हाँ आपसे वायदा किया है, दो सब बोल लीजिए।
आपने एक बहुत बहुत टेढ़े क्षेत्र में आध्यात्म की तलाश और संभावनाएं,
नहीं आपका रेगिस्तान खत्म हो गया, आपका रेगिस्तान तो खत्म हो गया, क्योंकि आप लंबे समय रेगिस्तान में थी ना, यहाँ तो हरियाली है।
जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, कल शिवानी जी ने एक बात कही थी,
टाइम हो गया क्योंकि अगला सत्र है, इसलिए मैं कह रहा।
शिवानी जी ने, शिवानी बहन जी ने एक बात कही थी कि राम राज्य को अगर लाना है तो हम पत्रकारों को आगे आना होगा। लेकिन शिवानी जी, हम लोग तो बहुत दुष्ट लोग हैं, क्योंकि हमारी तो जो काम है वो दिन रात रावणों को संरक्षित करना है। हम चाहे न चाहे, अनजाने, हम रावणों को संरक्षित करते हैं। लेकिन कल मैं ये सोचती रही कि किस तरह ये सब हो सकता है, जब 100 वर्षीय दादी जी, जानकी जी,
इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर सकती हैं और इतने लोगों को प्रेरित कर सकती हैं कि वो सत्य की तरफ मुड़ें, अध्यात्म की तरफ मुड़ें, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते।
वंडरफुल सर, आप कुछ कह रहे थे, एक एक मिनट में पूरा कर लीजिएगा। जी सर। जी सर।
हेलो, देखिए एक तो मैं संक्षिप्त में बता दूं।
सर एक मिनट में पूरा कीजिएगा अगला सत्र सर। हाँ तो जी जी।
ज्ञान का कोई परिमाण नहीं होता, उसकी कोई गहराई नहीं होती, कोई माप नहीं, कुछ भी नहीं उसका, ज्ञान का। ज्ञान अथाह होता है और उसको मापा नहीं जा सकता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज जो है शिव बाबा ने अपनी अव्यक्त वाणी में उन्होंने एक अंत में एक वरदान दिया है, इस वर्ष में विशेष आत्माएं स्वयं परिवर्तन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। इसलिए सभी से मेरा हमारा आग्रह है कि आप लोग स्वयं की से थोड़ा जुड़े, और कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा तुम्हारी इसके लिए काम कर रहा है, ये काम पहले भी होता रहा है। महर्षि योगानंद जी जो है उसने अपनी एक किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा, 17 भाषाओं में हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर उसको एक भाषा में जरूर लीजिए और पढ़िए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल नावल की तरह पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि नावल अध्यात्म की क्या शक्ति है।
थैंक यू सर,
उससे पता चलेगा।
थैंक यू सर। सर आप एक मिनट में कह लीजिए आप। जी प्लीज।
मैंने समस्या का जिक्र कर दिया, लेकिन जो मेरे हिसाब से मुझे सोल्यूशन मिला मैं उसको बता देता हूं। पत्रकारिता करते हुए जो मेरा अनुभव था, मैंने चार शब्द केवल याद रखे, डिग्निटी, पर्पस, कंट्रोल एंड टुगेदरनेस। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए बहुत भारी शब्द है, मैं पर्सनली उसको अपने मस्तिष्क पर नहीं ले पाता। तो मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि क्या किसी की डिग्निटी तो हर्ट नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो मैं उस पर दोबारा सोचूंगा। पी इज पर्पस, क्या वो कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है, उसको उसका औचित्य है, पॉजिटिव औचित्य है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। सी इज डीपीसीटी, क्या ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल दे रहा है सामने वाले को, सामने वाले से कंट्रोल छीन रहा है। मान लीजिए मैंने दीदी के बारे में एक खबर छापी, मान लीजिए दीदी के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है और मैंने उसको ऐसे करके छापा कि दीदी का सारा कंट्रोल ही चला गया, वो अबला हो गई हैं, अब उनका कोई भविष्य नहीं बचा है, सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, दीदी को तो कोई कंट्रोल नहीं दे रहा।
थैंक यू।
तो क्यों मेरी शब्द वाली है। और लास्ट है टी इज टुगेदरनेस, जो वसुधैव कुटुंबकम हम बार बार यूज करते हैं वो पूरा है उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। अगर मेरा उदार चरित्र है तो ही है, अदरवाइज तो मैं स्वीकार हूँ। ये डीपीसीटी तीन याद रखिएगा, मेरा नहीं है, सीबीटी की थेरेपी है, उससे मैंने चोरी किया है।
हो गया, नहीं नहीं हो गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का। और मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं बीच बीच में मैं शामिल करता रहा, अगर अगर कोई रह गया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपके तरफ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे वक्ताओं के ज्ञान के सागर इतने हैं जो हम उनको बहुत ज्यादा बांध भी नहीं सकते थे, नहीं तो ओवरफ्लो भी हो जाता। बट सबने अपने अपने बात रखी, आप सबने धैर्यता से सुनी और इस पूरे प्रोग्राम को आप सबने बहुत खूबसूरती बनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई मंचासीन, खास करके मंचासीन अतिथियों से, अगर किसी की भावना को मेरे रोकने से ठेस पहुंची हो तो मैं करबद्ध करके मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस माफी के भरोसे फिर वापस बोलने के लिए आप जरूर बाबा के घर में आते रहें, ताकि यहां के हवा का आनंद लेते रहें, हमारी यही शुभकामना है। थैंक यू। मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि बहनें आए और सबको हमारे अतिथियों को सौगात भेंट करके इस कार्यक्रम का, फिर इसके बाद अगला समापन होगा 10 मिनट ब्रेक के बाद, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, बहुत अच्छा सत्र है। शांतनु भाई फिर आ गए हैं सबका सम्मान करने के लिए, आप इनके सम्मान को स्वीकार करें। ताली तो बता दीजिए भाई, तुम पर मुझे लग रहा है कि ये सत्र सबको प्रसन्न आया होगा और जरूर आप वापस ब्रह्मा कुमारी का जहां भी केंद्र हो आप लोग जाके वहां राजयोग ध्यान जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जो हवाएं बह रही है उस हवाओं से आप रोक नहीं सकते, उससे बचने के लिए कवच कुंडल चाहिए और वो कवच कुंडल है यहाँ का ज्ञान, ध्यान और अध्यात्म, जो किसी भी परिस्थितियों में आपको लू लगने से बचाएगा, है ना। तो आप लोग इसको जरूर रहे, और ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं भी जाके आप कर सकते हैं 5-6 दिन लेकर के, और आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी अंदर से एक पॉजिटिव हो जाती है, जिसे हमारे मित्तल जी हैं, हमारे भानु जी हैं, श्री गोपाल नरसन जी हैं, शशि जी हैं, सब लोग, तमाम जो हमारे लोग बैठे हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का तजुर्बा बहुत बढ़िया है, आप इनसे समझ सकते हैं।